नाट्य समीक्षक का वक्तव्य। संस्कारों तक को प्रभावित करने वाली कथाएं हमें बालक जैसी सरल और अपूर्व ग्रही मन स्थिति में ले जाती हैं, ग्रहणशील बनाती हैं। ऐसी कथाएं दादी नानी की कहानी या परियों की कहानी या लोकरंजक तत्वों की अतिरंजना लिए होती हैं। दूर से जैसे कोई दृश्य बिंदु बढ़ता चला आता है, हमें छा लेता है, फिर दूर चला जाता है। अनुभूत का क्षण वही छा लिए जाने का क्षण है, साधारणीकरण का सिद्धांत। किंतु उन क्षण क्रमों के पहले और बाद की प्रक्रिया और शैली उसकी निष्पत्ति के लिए अनिवार्य है। यद्यपि रस परिपाक के बाद उसका स्वतः कोई महत्व रह नहीं जाता। हैवदन पहले पढ़ा, दिशांतर के लिए कारंत के निर्देशन में अभिनय किया, सत्यदेव दुबे के निर्देशन में हुआ प्रदर्शन देखा, प्रस्तुतियों की विभिन्न समीक्षाएं पढ़ी, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनी, नाटक के बारे में पत्र पत्रिकाओं के मत भी पढ़े और पिछले दशक में हुए आए नाटकों पर विषय और स्वरूप को लेकर अपनाए गए रुखों को जानकर मैंने सोचा तो लगा ऊपर की बात जो नई नहीं है मैं बड़े भरोसे से बढ़ा सकता हूँ। पुरुष की अपूर्णता मनुष्य की अपूर्णता को विभिन्न कालखंडों में रखकर अनेक नाटक लिखे गए हैं। आधे अधूरे, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक आदि में भी यह ध्वनि है। इन सभी नाटकों में स्त्री पुरुष संबंध को लेकर किसी या किन्हीं बिंदुओं से त्रिकोण बनते हैं। हैवदन की उपकथा में मनुष्य को पूर्ण मनुष्य होने से आरंभ होकर शरीर और मस्तिष्क दोनों की श्रेष्ठता की कामना मुख्य कथा में प्रदर्शित की जाती है। अन्य नाटकों में सीधे हमारे घरों में नाटककार बैठता है, बिंब चरित्र लेता है और हम स्वीकारते हैं, देखते संकोच करते हैं, आधे अधूरे के लिए कम अपवाद नहीं मिले। साथ ही और भी आदि स्तर पर उतरकर शरीर और मस्तिष्क के बीच जब नारी झूलती है तो क्या स्वयं मानव कामना को इंगित नहीं करती? प्रकृति में जीव क्रम के संपूर्ण विकास की सर्वोत्तम उपलब्धि इकाई मानव है, वह भी अपूर्ण है। यह त्रासदी बड़ी दंशकारी है, इसे जब आज के दैनंदिन जीवन से दूर परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का अवसर मिलता है तो वह दूरी ही उसे समग्र रूप में देख पाने की सुविधा देती है। तत्काल वर्तमान में सद्य हो रही चेतना की झुरझुरी से जोड़ देती है, आग्रह और संकोच टूट जाते हैं, कथा गाथा का रूप लेती है, क्योंकि जो कुछ उस प्रक्रिया द्वारा उस क्षण सहभोगा जा रहा है उसमें एक गरिमा है। गाथा गाई जाती है या कही जाती है, इसी के अंतर में गाथा और कथा का अंतर है। तकनीकी अंतर अनुभूति क्षमता के अंतर का द्योतक बन जाता है। हैवदन के आरंभ में भागवत, नट और हैवदन का उपकथा प्रसंग जिस क्रम से मूल कथा के सिर और शरीर के विपर्य की ओर हमें ले जाता है वह अपने में अनोखा है। देवदत्त, कपिल और पद्मिनी की कहानी आरंभ होने के पहले हैवदन द्वारा पूर्ण मनुष्य होने, पूर्णांग होना चाहने का दर्द हास्य बनकर आता है, किंतु जब समस्या सुरता सी विकसित होती है तब स्थिति की वास्तविकता कालखंडों को पार कर हमारे मनों में घर करने लग जाती है। यहाँ संगीत द्वारा उसे अनुभूतिक तीव्रता और सूक्ष्मता दी जाती है। अतएव हास्य और संगीत अनुभूत पक्ष के लिए अनिवार्य अंग बनकर आता है ऐसे नाटक में। कारंत ने सारे नाटक की लोकधर्मिता का पूर्ण उपयोग इस दृश्य से किया और पात्र कल्पना के फलक पर टंगे चित्रों से उतर कर जैसे क्रियाशील होने लगे मुखौटों जैसी रूप सज्जा, मंच पर उत्सवी रंग जैसी मांगलिक क्रियाएं, वेशभूषा में लोक पक्ष शैली और पौराणिकता, संगीत की धुने लोक धुने थी और ऐसा लग सकता था कि किसी पुराने जमाने की कथा है जिसे नाच गाकर नट बता रहे हैं। व्यभिचारी भावों की सूक्ष्म आवाजाही से बचकर बड़ी संकट रेखा को उभारा गया, इससे पात्रों की स्वरूपगत दूरी निपटी गई, मात्र भाव और अनुभूत के स्तर पर दर्शक की भाषा से तादात्म्य किया गया। मैंने जो आपत्तियां पढ़ी उनमें आग्रह इन्हीं लोक तत्वों को लेकर है। इतनी आधुनिक थीम को इस बाने में ढालने की आवश्यकता क्या है, यह आरोपित लगा कई सुधीजनों को। कुछ निर्देशकों ने इससे आजादी लेने के प्रयत्न में कलेवर का रंग सिर्फ फीका किया। यदि किसी तर्क से काली खम्भ ठोक कर मंच पर आकर दर्शकों का मनोरंजन कर सकती है, तो उसी तर्क से शेष लोक पात्रों को भी जीवंत और संबद्ध सम्यक शैली होनी चाहिए था। ऐसे में मुख्य कथा के पात्रों को शैली की दृष्टि से सारे ताने बाने से हटाना आंशिक दृष्टि या सौंदर्यानुशासन की कमी के अतिरिक्त कुछ नहीं। निजी रूप से अभिनेता से अधिक मेरी रुचि इस नाटक की समग्र अनुभूति में रही। जहाँ पहली भारतीय नाट्य स्वरूप की शक्ति लोक तत्वों से ऊर्जा लेकर चमक पड़ी थी, अभिनय या उसकी तकनीक तथा लयात्मक गतियों को लेकर जो समस्याएं आई अभिनेता के रूप में हुई, मेरी उन समस्याओं और अन्य लेखे जोखे से मैं बचकर निकला हूँ।